अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, नवंबर की 23 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की फ़ौज के नए सरबराह के तकर्रुर से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होने के बाद शाहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को मुशावरत के लिए बुला लिया है। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ को फ़ौज की कमान के लिए GHQ की जानिब से भिजवाए गए 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स में से किसी एक नाम का इंतखाब करना है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जुमेरात को वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री ज़ेर गौर आएगी। बुध को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ के तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और वफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि मुशावरत का ये अमल मुकम्मल करके 2 रोज़ तक नए सिपाह सलार की तकर्री कर दी जाएगी। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है। बुध को रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान के यौम दिफाओ शहादा की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें फ़ख्र है कि वो 6 साल पाकिस्तान फ़ौज के सिपह सालार रहे। उन्होंने सन 1971 से मुतालिक बात करते हुए कहा कि साबिका मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं सियासी गलती थी। लड़ने वाले फ़ौजियों की तादाद 92,000 नहीं 34,000 थी, जिनका मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फ़ौज और 2 लाख तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहनी से था। जनरल बाजवा ने कहा कि फ़ौज आइंदा भी सियासी मामलात से खुद को अलग रखेगी। एक जानिब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट शुरू हो गया है, लेकिन कई तजियाकारों के बकौल जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के बरक्स पाकिस्तान इस मौके पर अपनी अफरादी कुव्वत को बरामद करने का मौका हाथ से गंवा बैठा है और इस मेगा इवेंट से भरपूर फायदा हासिल नहीं कर सका। आदादोशुमार से पता चलता है कि इस साल पाकिस्तानियों के लिए कतर ने 2 लाख अफराद का कोटा मुख्तस किया था, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान से अक्टूबर के आखिर तक सिर्फ 46,500 अफराद कतर मुलाजमत के लिए जा पाए। दरियासना वजारत के सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर आगा रफ़ीउल्ला ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुलाजमतों के लिए भेजने को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए, लेकिन कतर के आखिर में वीज़ा का अमल बहुत सुस्त था और ये नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। तहम उन्होंने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेगी ताकि वो तरसीलात ज़र भेज सकें, जिसकी आजकल पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है। वर्ल्ड कप की मेज़बानी का कुरा दोहा के नाम खुलने के बाद से खलीज के इस मुल्क में गैर मुल्की मजदूरों के साथ बदसलूकी के वाक़यात पर तनकीद और इल्ज़ामात का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इतवार को मुकाबलों के आगाज के बाद भी बदस्तूर जारी है। ताहम खेलों के इफ्तिताह से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो ने इंसानी हकूक के हवाले से मुल्क के खराब रिकॉर्ड पर मगरबी तनकीद की मजम्मत करते हुए मीडिया पर मुनाफकत का इल्जाम लगाया। ट्विटर समेत सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लोगों ने बरतानवी रोजनामे गार्डियन की इस रिपोर्ट को शेयर किया, जिसमें बताया गया था कि सन 2010 में वर्ल्ड कप की मेजबानी का हक हासिल करने के बाद से मुबैना तौर पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले 6,500 से ज्यादा तारिकीन वतन कारकुन कतर में हलाक हो चुके हैं। गार्डियन की तहकीकात के मुताबिक ये तादाद मजदूरों के आबाई ममालिक के आदाद शुमार पर मबनी है। कतरी हुकाम ने बरतानवी अखबार की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि आजादी इजहार पर किसी भी तरह की पाबंदी अमरीका के लिए बाइस तशवीश होती है। अमरीका की चोटी के सिफारतकार ने मंगल के रोज दोहा में اپنے قطری ہم منصب کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیفا کے اس فیصلے پر تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی کھلاڑی نے تنوع اور شمولیت کی حمایت میں بازو پر پٹی باندھی تو اسے یلو کارڈ دکھا دیا جائے گا۔ نیوز کانفرنس میں بلنکن کے ساتھ موجود قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اپنے ملک پر میڈیا میں تنقید کے حوالے سے قطر کے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ کچھ حلقے ایسے ہیں جو ان پر توجہ نہیں دیتے بلکہ متعصبانہ نظریات پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو دوحا کے دورے کے دوران افغان مہاجرین کے کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے ٹیم سے ملنے اور افغان افراد سے بات کرنے کے لیے کیمپ اسالیہ کا دورہ کیا جو جلد ہی امریکہ کو اپنا گھر کہہ سکیں گے۔ افغانستان کے لوگوں کے لیے قطر کی حمایت نے ہماری شراکت داری کو تقویت دی ہے۔ بلنکن کا یہ دورہ قطر کے ساتھ فوجی اہمیت کے مذاکرات کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ کے 8,000 فوجی قطر کے العبید کے فضائی اڈے پر تعینات ہیں جو آئندہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران بھارت کے متنازع اسلامی اسکالر اور مبلغ ذاکر نائک کو مبینہ طور پر تبلیغ کے لیے مدعو کیے جانے پر بھارت میں شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے اور قطری حکومت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بھارت اس معاملے کو قطر کی حکومت کے سامنے سخت انداز میں اٹھائے گا۔ دریاسنا رپورٹس کے مطابق قطر نے سفارتی ذرائع سے بھارت کو مطلع کیا ہے کہ 20 نومبر کو دوحا میں منعقد ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے ذاکر نائک کو سرکاری طور پر مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بھارت اور قطر کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کے مقاصد سے تیسرے ملکوں نے آمدن ایسی غلط خبر پھیلائی ہے۔ طالبان پکتیا سرحدی جھڑپوں پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک مشترکہ ورکنگ کمیٹی کام کر رہی ہے اور مستقبل میں ایسے مسائل کو روکنے کے لیے اپنی ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ طالبان اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان 3 روز تک جاری رہنے والی لڑائی منگل کو روک دی گئی اور دونوں فریقین سرحد پر ملے، لیکن اب تک ان مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلاحی رابطہ کار دفتر اوچا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس موسم سرما میں 24.4 ملین افراد انتہائی مایوس کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اوچا کے مطابق اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ انہیں فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں گرم کپڑے، پناہ گاہ اور حرارت کے حصول کے لیے نقد رقم درکار ہے۔ افغان خاندانوں کو پہلے ہی منجمد درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ اسلامی بنیاد پرستی کے ناقد ایک امریکی بلاگر اویجیت رائے اور ان کے بنگلہ دیشی پبلشر کو قتل کرنے کے مجرم 2 عسکریت پسند بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی ایک پرہجوم عدالت سے فرار ہو گئے۔ القاعدہ سے متاثرہ مقامی عسکریت پسند تنظیم انصار اللہ بنگلہ ٹیم یا ABT کے مشتبہ ارکان نے پولیس افسران کی آنکھوں میں زہریلا کیمیکل چھڑک دیا اور مجرموں کو موٹر سائیکلوں پر سوار کر کے بھگا دیا جبکہ وہ انسداد دہشت گردی ٹرائبونل سے واپس جا رہے تھے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کی جانب CC برانچ کے سربراہ ہارون رشید نے بتایا کہ بائک پر سوار آنے والے افراد زہریلا مادہ چھڑکنے کے بعد دونوں مجرموں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پولیس اتھارٹی نے مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے معلومات فراہم کرنے والے کے لیے 20 لاکھ ٹکا کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس نے اپنے انعامات برائے انصاف کے دفتر کے ذریعے رائے کے قتل میں ملوث کسی کی گرفتاری یا سزا کا باعث بننے والی معلومات کے لیے 5 ملین امریکی ڈالر کے انعام کا اعلان دسمبر سن 2021 میں کیا تھا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں پولیس منگل کو دیر گئے وال مارٹ اسٹور میں ہونے والی فائرنگ کی تحقیقات کر رہی ہے जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए थे। चेसापेक शहर की जानिब से बुध की सुबह बताया गया कि पुलिस ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक कर दी है और शूटर भी हलाक हो गया है। हुकाम ने यह नहीं बताया कि शूटर की मौत कैसे हुई और न ही शूटिंग के हालात के बारे में तफसीलात बताई हैं। वॉलमार्ट ने एक बयान में कहा कि वो इस अलमनाक वाकये पर सदमे में है। यह हमला कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक LGBTQ नाइट क्लब में फायरिंग के चंद रोज बाद हुआ है, जिसमें 5 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। यूक्रेनी हुकाम ने बुध को कहा कि रूसी अफवाज की तरफ से रात गए एक फजाई हमले में जुनूबी यूक्रेन में एक अस्पताल के जचगी वार्ड को निशाना बनाया गया, जिसमें एक नौजायदा बच्चा हलाक और उसकी मां जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि मिसाइल ने ज़ापोरिज़्या के इलाके विलिनियांस्क में 2 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि रूस शहरियों और शहरी असासों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। दुश्मन ने एक बार फिर दहशतगर्दी और कत्ल वगारत के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश का फैसला किया है, जो वो 9 माह से हासिल नहीं कर सका था और न ही कर सकेगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने मंगल को कहा कि उसने कीव में एक तारीखी रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई खानकाह पर छापा मारा है, ताकि मुश्तबा रूसी खसूसी सर्विसेज की तकरीबी सरगर्मियों का मुकाबला किया जा सके। उधर मॉस्को में क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोफ ने यूक्रेन के हुक्काम पर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ जंग शुरू करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि यह तलाश रूसी ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ उन जारहाना इकदाम के सिलसिले की एक और कड़ी है। यरूशलम में बस स्टॉप के करीब आज बुध के रोज 2 धमाके हुए, जिनमें 1 शख्स हलाक और कम अज कम 14 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि ये मुश्तबा हमले फलस्तीनियों की तरफ से किए गए थे। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब इसराइल फलस्तीन कशीदगी में इजाफा हुआ है और जेरे कंट्रोल मगरबी किनारे में कई माह के इसराइली छापों के बाद मौलिक हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिनमें 19 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान ने हमले में मुलव्वस होने की तर्दीद की है। अक्वामे मुत्तहिदा में उसके मिशन ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयानात में इन इल्जामात को झूठी खबरदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। सदर जो बाइडन अपनी 80वीं सालगिरह के एक रोज बाद 75 साल पहले शुरू होने वाली एक दिलचस्प रिवायत में हिस्सा ले रहे हैं, और वो है थैंक्स गिविंग टर्कीस की जान बख्शी। इस साल व्हाइट हाउस में जिन खुशकिस्मत परिंदों की जान बख्शी की गई है, उनके नाम हैं चॉकलेट और चिप। दोनों का वजन तकरीबन 21 किलोग्राम है। इन दोनों को शिमाली कैरोलिना के एक फार्म में पाला गया था। अमरीका में हर साल नवम्बर की चौथी जुमेरात को थैंक्स गिविंग या यौम तशक्कुर मनाया जाता है। ये वो दिन है जब अमरीकी अपने खानदान और दोस्तों के हमरा इकट्ठे होकर खसूसी दावत और ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं और ज़िंदगी की नेमतों की बहुतात पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस त्यौहार को अमरीकी माशरे में इंतहाई अहम मकाम हासिल है। ज़्यादातर अमरीकी इस मौके को अपने ख़ानदान और अजीज़ व अक़ारिब से मिलने, उनके साथ कुछ वक्त गुजारने और मिल बैठ कर खाना खाने का एक जरिया समझते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। अपने इस सिलसिले को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।